नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे। नाम है ओजस्वी तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्तित्वों का निर्माण। कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे व्यक्ति और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
जी बिल्कुल। और इस उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव ने तीन प्रतीकात्मक उद्घाटन की बात की थी, ब्रह्मवर्चस आश्रम, प्रज्ञा मंदिर और गायत्री नगर।
हाँ, मैंने पढ़ा था।
तो ये बाहर से देखने में शायद छोटे लगे, पर असल में ये व्यक्ति और समाज को अंदर से बदलने वाले गहरे सिद्धांतों के प्रतीक है।
अच्छा
जी, ये सिर्फ कोई इमारतें नहीं है बल्कि एक बड़े वैचारिक और आत्मिक, कहना चाहिए उलटपुलट की नींव है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे आत्मिक शक्ति, विवेक और पारिवारिक मूल्यों से व्यक्ति का नव निर्माण करके एक बेहतर युग की तरफ कैसे बढ़ा जाए।
बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मवर्चस से। ये नाम ही बहुत शक्तिशाली है, इसका ठीक ठीक मतलब या उद्देश्य क्या है?
देखिए, आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई भट्टी हो या कोई फैक्ट्री जहाँ इंसान के व्यक्तित्व की गलाई और ढलाई होती है।
गलाई और ढलाई। हाँ।
यहाँ जोर पैसे या बाहरी साधनों पर नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
जोर है आत्मिक शक्ति पैदा करने पर, आत्मबल जिसे कहते हैं।
आत्मबल।
जी, पूज्य गुरुदेव का मानना था कि असली परिवर्तन पैसे से नहीं आता।
जी।
वो आता है विचारों और आस्थाओं को बदलने से।
जी।
और उसके लिए आत्मबल चाहिए ही चाहिए।
सही बात है।
इसी ताकत से व्यक्ति की सोच, उसकी मान्यताएं, उसका ईमान, ये सब बदला जा सकता है।
जी।
और यही तो नए युग के निर्माण की पहली शर्त है। तो ब्रह्मवर्चस्व में साधना और अनुसंधान से इसी आत्मबल को जगाने का काम होता है।
अच्छा, यानी व्यक्ति के अंदर की जो शक्ति है उसको जगाना।
जी।
ताकि वो बाहर की दुनिया में आदर्शों पर टिका रह सके। तो फिर इस प्रक्रिया से कैसे लोग, कैसे व्यक्तित्व तैयार होंगे? आपने मनस्वी और तपस्वी कहा।
हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के व्यक्तित्व, मनस्वी और तपस्वी। देखिए, मनस्वी वो है जो अपने मन का गुलाम नहीं है, मालिक है, स्वामी है।
मन का स्वामी।
हाँ, आजकल क्या होता है, ज्यादातर लोग तो मन के पीछे ही भागते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लोभ मोह अहंकार।
बिल्कुल।
मनस्वी इन सबसे ऊपर उठ जाता है, वो सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जीता है। उसकी पहचान क्या है, वो अपनी इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की दिशा बदल देता है, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागता।
तो फिर क्या करता है?
वो सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाता है। अब ब्रह्मवर्चस में इसी मन को साधने की, कंट्रोल करने की कला सिखाई जाती है।
मन का स्वामी बनना, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें तो इसी अनियंत्रित मन से ही शुरू होती हैं।
अच्छा, और तपस्वी बनना, ये मनस्वी होने से अगला कदम कैसे हुआ?
हाँ देखिए, जब व्यक्ति मनस्वी बन गया, मन पर काबू पा लिया, तब वो तपस्वी बनने की तरफ बढ़ता है। तपस्वी का मतलब सिर्फ जंगल में जाकर तपस्या करना नहीं है। अच्छा
नहीं, तपस्वी वो है जिसका दिल दूसरों की पीड़ा देखकर पिघल जाता है, वो संत हृदय व्यक्ति है, और वो उस पीड़ा को दूर करने के लिए खुद कष्ट उठाता है।
जैसे कोई उदाहरण?
बिल्कुल, जैसे समुद्र के बीच में लाइट हाउस होता है ना।
हाँ।
वो खुद खड़ा रहता है ताकि जहाजों को रास्ता दिखे।
हाँ।
या जैसे बादल खुद बरस जाते हैं धरती की प्यास बुझाने, कोई अपेक्षा नहीं रखते। या फिर जैसे एक माँ या पत्नी अपने परिवार के लिए करती है, कितना त्याग, कितना स्नेह होता है उसमें।
सही बात है।
तो तपस्वी अपने पुण्य से, अपनी ऊर्जा से, अपनी क्षमता से समाज का भला करता है। तप का असली मतलब यही है, कष्ट सहकर जो बचाया उसे परमार्थ में लगाना, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य।
समझ गया। तो तपस्वी का मतलब सिर्फ खुद कष्ट सहना नहीं बल्कि समाज के लिए गहरी संवेदना और सेवा है। ठीक है, तो ब्रह्मवर्चस से आत्मबल मिला, मनस्वी तपस्वी व्यक्तित्व बने, अब ये प्रज्ञा मंदिर, इसकी क्या भूमिका है?
प्रज्ञा मंदिर भी सिर्फ एक पूजा का केंद्र नहीं है, ये प्रतीक है प्रज्ञा का। प्रज्ञा यानी विवेक, दूरदर्शिता, सही गलत को समझने की न्यायपूर्ण बुद्धि।
विवेक और दूरदर्शिता।
जी, पूज्य गुरुदेव एक शब्द इस्तेमाल करते थे, अकल, मतलब वो बुद्धि जो सिर्फ फौरी फायदा नुकसान देखती है।
हाँ, शॉर्ट टर्म गेन वाली सोच।
बिल्कुल। तो प्रज्ञा मंदिर का उद्देश्य है इस अकल की जगह प्रज्ञा को स्थापित करना। गायत्री माता इसी प्रज्ञा और श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा यानी श्रेष्ठता के प्रति, अच्छे के प्रति एक गहरा खिंचाव, समर्पण।
अच्छा, प्रज्ञा और श्रद्धा।
हाँ, तो प्रज्ञा मंदिरों का लक्ष्य है लोगों में इसी विवेक और श्रद्धा को जगाना, ताकि समाज बेहतर बन सके। इसके लिए गुरुदेव ने ज्ञान रथ जैसे माध्यमों से अच्छे विचार फैलाने की बात भी कही थी।
मतलब सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं, विवेकवान होना जरूरी है, और श्रद्धा के बिना शायद विवेक भी भटक सकता है। क्या बात है। अच्छा, अंत में गायत्री नगर, इसकी क्या संकल्पना थी, इसका क्या उद्देश्य था?
गायत्री नगर है परिवार निर्माण की प्रयोगशाला एक तरह से। पूज्य गुरुदेव का ये मानना था कि स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान से नहीं उतरता, उसका अवतरण सबसे पहले परिवार में होता है।
परिवार में स्वर्ग। जी,
अगर परिवार अच्छे होंगे, सुसंस्कृत होंगे, स्नेह से भरे होंगे, तो वहीं से अच्छी संतानें, जिन्हें गुरुदेव नर रत्न कहते थे, वो पैदा होंगे,
और वही समाज को सही दिशा देंगे।
और इसमें नारी की भूमिका बहुत केंद्रीय है।
हाँ।
क्योंकि माना जाता है कि उनमें श्रद्धा तत्व, मतलब उत्कृष्टता के प्रति समर्पण, स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है।
तो घरों में क्या करना चाहिए इसके लिए?
घरों में सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड ही काफी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है आस्तिकता का माहौल, मतलब ईश्वर और नैतिक मूल्यों में विश्वास। जैसे छोटी छोटी चीजें, भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद देना, सब मिलकर प्रार्थना या आरती करना, रोज अग्निहोत्र का सरल रूप करना, जैसे स्त्रियां भोजन बनाते समय घी की कुछ आहुतियां दे दें, ये छोटी चीजें घर के वातावरण को पवित्र बनाती हैं।
अच्छा, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। आत्मबल, जो ब्रह्मवर्चस्व से मिलेगा।
हाँ।
विवेक और श्रद्धा, जो प्रज्ञा मंदिर का प्रतीक है।
जी।
और सुसंस्कृत पारिवारिक मूल्य, जैसा गायत्री नगर की संकल्पना में है। ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति और समाज को बदल सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सार यही है। पूज्य गुरुदेव का आह्वान भी यही है कि व्यक्ति पहले अपने मन को जीते, मनस्वी बने, फिर दूसरों के लिए कष्ट सहे, तपस्वी बने, और जीवन के हर फैसले में तात्कालिक लाभ न देखकर प्रज्ञा यानी विवेक से काम लें। यही व्यक्तिगत साधना जब बहुत से लोग करेंगे तो सामूहिक रूप से समाज में नवयुग आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस अंदरूनी बदलाव की यात्रा में आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें पहला कदम, पहला सार्थक कदम क्या हो सकता है?